एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत।
नमस्कार।
और आज हम सबके साथ हैं।
आज हम एक ऐसे विचार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन सच पूछिए तो हमारी जिंदगी के रेशे रेशे में बुना हुआ है।
हाँ बिल्कुल।
पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद, और इसे समझने के लिए हम क्रिस्टोफर बटलर की किताबों, खासतौर पर उनकी जो पोस्ट मॉडर्निज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, उसके सार को देख रहे हैं।
और ये समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ कोई यूनिवर्सिटी की अकेडमिक बहस नहीं रह गई है।
सही कहा।
आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारी फिल्में, मीडिया, राजनीति, अरे हम खुद को कैसे देखते हैं, इन सब पर पोस्ट मॉडर्निज्म की गहरी छाप है।
हाँ, ये उन बड़े बड़े दावों पर, उन बड़ी कहानियों पर सवाल उठाता है जो हमें सदियों से सिखाई गई हैं, जैसे कि तरक्की हमेशा सीधी रेखा में ही चलेगी, या विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब होगा, या सच हमेशा एक ही होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक तरह से शक करना सिखाता है,
जो शायद आज के जमाने में जरूरी भी है ना?
तो ये क्रिस्टोफर बटलर, जिनकी किताबों से हम ये समझ रहे हैं, ये थे कौन? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, पर उनकी दिलचस्पी सिर्फ लिटरेचर में नहीं थी।
हाँ, वो विचारों के इतिहास में, आइडियाज कैसे बदलते हैं, उसमें बहुत रुचि रखते थे।
और उनकी खास बात ये थी कि वो मुश्किल से मुश्किल दार्शनिक विचारों को भी हवा में नहीं छोड़ते थे।
बिल्कुल, वो उन्हें जमीन पर लाते थे, असली दुनिया के उदाहरणों से जोड़ते थे, कला, आर्किटेक्चर, साहित्य।
हाँ, जैसे वो लियोतार या फूको जैसे दार्शनिकों की बातें कर रहे हों, तो साथ में एंडी वॉरहॉल की पेंटिंग या किसी बिल्डिंग के डिजाइन का उदाहरण दे देंगे।
इससे चीजें एकदम साफ हो जाते हैं, समझने में आसान लगती हैं।
बिल्कुल, और उनका नजरिया भी काफी बैलेंस था। वो ऐसे नहीं थे कि पोस्ट मॉडर्निज्म के एकदम फैन हों या फिर उसके घोर विरोधी।
अच्छा।
वो बस इसे एक जरूरी बौद्धिक और सांस्कृतिक मोड़ की तरह समझने और समझाने की कोशिश करते थे। खासकर मॉडर्निज्म के बाद ये कैसे उभरा, इस पर उनका ध्यान था।
तो बटलर की ये किताबें असल में हैं किस बारे में, अगर बहुत आसान शब्दों में कहें तो?
देखिए, आसान भाषा में ये पोस्ट मॉडर्निज्म की जो गुत्थी है ना, उसे सुलझाने वाली चाबियों जैसी हैं।
अच्छा, गाइड की तरह।
हाँ, एक तरह से गाइड। वो इसे किसी डरावने हव्वे की तरह नहीं दिखाते, बल्कि ये बताते हैं कि ये कई सारे मिलते जुलते विचारों और कला शैलियों का एक झुंड है जो आपस में जुड़े हुए हैं।
और इन सब विचारों के मूल में क्या है, इनका सेंट्रल आइडिया?
बटलर कहते हैं कि जड़ में है मेटा नैरेटिव्स के प्रति गहरा शक। अब ये मेटा नैरेटिव्स क्या हैं? ये वो बड़ी बड़ी कहानियां हैं, वो सिद्धांत हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास दुनिया या इतिहास की पूरी एकमात्र सच्ची व्याख्या है।
जैसे वो प्रोग्रेस वाली कहानी कि तर्क और विज्ञान से इंसान लगातार बेहतर ही होता जाएगा।
बिल्कुल।
या फिर कोई महान विचारधारा जो कहती है कि इतिहास का बस यही एक निश्चित लक्ष्य है। पोस्ट मॉडर्निज्म इन सब पर सवालिया निशान लगाता है। वो कहता है, जरा रुको, क्या वाकई ऐसा है?
हाँ, और ये शक शायद आया भी होगा 20वीं सदी की उन बड़ी त्रासदियों के बाद, है ना? जैसे वर्ल्ड वॉर्स, कॉलोनियलिज्म।
सही बात है।
जब वो बड़े बड़े वादे, बड़ी विचारधाराएं फेल होती दिखी, तो सवाल उठना तो लाजमी था।
बटलर हमें दिखाते हैं कि ये शक सिर्फ फलसफे या किताबों तक ही नहीं रहा, ये हमारी कला में, हमारी इमारतों में, हमारी कहानियों में, यहाँ तक कि हम अपनी पहचान को कैसे समझते हैं, उसमें भी उतर आया।
लेकिन ये सिर्फ तोड़ने या नकारने की बात नहीं है। बटलर ये भी जोर देकर कहते हैं कि इस शक से एक नई किस्म की आजादी भी मिली, एक नई तरह की क्रिएटिविटी।
अच्छा, किस तरह के?
इसमें आपको मजाक मिलेगा, विडंबना मिलेगी, पुरानी चीजों को नए चंचल ढंग से इस्तेमाल करने का खेल, पास्टिश मिलेगा, और वो जो ऊंची कला और आम या लोकप्रिय संस्कृति के बीच की दीवार थी ना, उसे गिराने की कोशिश भी दिखेगी।
चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म की कोई एक पक्की परिभाषा देना इतना मुश्किल क्यों है?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। शायद मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये विचार खुद ही किसी एक परिभाषा में बंधने का विरोध करता है।
अच्छा, ये अपनी ही बात कर रहा है
एक तरह से। हाँ, ये कोई एक ठोस सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक रवैया है, एक मूड है, जो अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीकों से नजर आता है।
और ये रवैया पनपा कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ है?
बटलर इसे जोड़ते हैं 1960 और 70 के दशक की सामाजिक उथल पुथल से।
जैसे वियतनाम युद्ध।
हाँ, वियतनाम युद्ध, अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट, फ्रांस में छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शन, इन सब घटनाओं ने पुरानी व्यवस्थाओं और पुराने विश्वासों को जोर से हिला दिया था।
और आधुनिकता के जो बड़े वादे थे कि तर्क सब ठीक कर देगा, विज्ञान सारी समस्याएं सुलझा देगा।
उन पर से लोगों का भरोसा कह सकते हैं डगमगाने लगा था। पोस्ट मॉडर्निज्म इसी भरोसे की टूटने की आवाज एक तरह से। अब अगर इसके कुछ बुनियादी दार्शनिक विचारों की बात करें तो एक नाम बहुत अहम है, जॉन फ्रांस्वा लियोतार।
हाँ, उनका नाम तो आता है।
उन्हीं का वो मशहूर फिक्रा है मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वसनीयता। उनका कहना था कि बड़ी घटनाओं ने, जैसे हॉलोकॉस्ट ने, ये दिखा दिया कि प्रगति या मुक्ति की कोई एक सार्वभौमिक कहानी नहीं हो सकती जिस पर सब आंख बंद करके यकीन कर लें।
तो फिर क्या बचा?
उनकी जगह ले ली छोटी स्थानीय कहानियों ने, माइक्रो नैरेटिव्स जिसे वो कहते हैं, जो किसी खास समूह, किसी खास जगह, किसी खास अनुभव के लिए मायने रखती हैं।
ये बात तो समझ आती है। जैसे भारत में ही देख लें, कितनी अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं, मान्यताएं हैं। कोई एक महान भारतीय कहानी कहना कितना मुश्किल है। शायद लियोतार इसी तरफ इशारा कर रहे थे।
बिल्कुल। फिर एक और बड़ा नाम है मिशेल फूको का। उन्होंने ज्ञान और शक्ति के रिश्ते पर बहुत काम किया।
नॉलेज और पावर।
हाँ, फूको का कहना था कि ज्ञान कभी मासूम या तटस्थ नहीं होता। जिसे हम सच या तथ्य मानते हैं वो अक्सर ताकतवर लोगों या संस्थाओं जैसे सरकार, स्कूल, अस्पताल, जेल द्वारा तय किया जाता है, ताकि चीजों और लोगों को वर्गीकृत किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके।
इसका कोई उदाहरण?
सोचिए, इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है और क्या छोड़ दिया जाता है, या डॉक्टरों द्वारा किसी चीज को बीमारी कहना और किसी को नहीं। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये खास तरह का नजरिया बनाना और नियंत्रण रखना भी है। फूको के लिए ज्ञान और शक्ति हमेशा एक दूसरे में गुथे हुए हैं।
अच्छा, तो ये जो शक करने और सवाल उठाने वाला रवैया है, ये कला और आर्किटेक्चर में कैसे नजर आया?
हाँ, वहां भी ये बहुत साफ दिखा। देखिए, पहले जो मॉडर्निज्म था उसका मंत्र था लेस इज मोर,
सादगी, शुद्धता।
बिल्कुल, सीधी रेखाएं, कोई फालतू सजावट नहीं, एकदम फंक्शनल।
लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ने इसे पलट दिया। आर्किटेक्ट रॉबर्ट वेंचुरी का नारा ही था लेस इज अ बोर,
मतलब सादगी तो उबाऊ है।
हाँ, तो उनकी इमारतें ज्यादा जटिल होती थीं, ज्यादा रंगीन होती थीं, और अक्सर उनमें इतिहास से, पुरानी शैलियों से चीजें उधार ली जाती थीं, लेकिन मजाकिया ढंग से।
जैसे किसी एकदम नई मॉडर्न दिखने वाली बिल्डिंग पर पुराने जमाने के कॉलम या मेहराब लगा देना।
ये उस पुरानी गंभीरता के खिलाफ एक तरह का खेल था, एक मजाक था।
और कला में
एंडी वॉरहोल का नाम तो जहन में आता है।
हाँ, एंडी वॉरहोल का पॉप आर्ट एक क्लासिक उदाहरण है। उन्होंने क्या किया, सूप के डब्बे या मर्लिन मुंड्रो जैसी सेलिब्रिटी की तस्वीरों को आर्ट बना दिया।
इससे तो ये सवाल खड़ा हो गया कि बे आर्ट आखिर है क्या? क्या सिर्फ वो महंगी पेंटिंग जो म्यूजियम में टंगी है, या रोजमर्रा की चीजें भी आर्ट हो सकती हैं?
बिल्कुल, और उन्होंने मास प्रोडक्शन की तकनीकें इस्तेमाल की, जैसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। इससे वो जो मॉडर्निस्ट आइडिया था ना कि कलाकार एकदम यूनिक होता है, उसकी छाप एकदम ओरिजिनल होती है, उस पर भी सवाल उठा।
यहाँ वो पेस्टिश वाली बात आती है, मतलब शैलियों का मिश्रण।
हाँ, पेस्टिश यानी अलग अलग शैलियों, विचारों, छवियों को बिना किसी खास क्रम या पदानुक्रम के मिला जुलाकर कुछ नया बनाना, जैसे आजकल म्यूजिक में रिमिक्स बनते हैं या मीम्स बनते हैं। ये सब पोस्ट मॉडर्न क्रिएटिविटी के उदाहरण हैं। साहित्य में भी कहानी कहने के जो पुराने परंपरागत तरीके थे उनको तोड़ा गया।
अच्छा, कैसे?
एक चीज है मेटाफिक्शन, मतलब जब कहानी खुद अपने कहानी होने के बारे में बात करने लगे। वो पाठक को लगातार याद दिलाती है कि भाई, ये हकीकत नहीं, ये एक बनाई हुई चीज है।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, जैसे इटालो कैल्विनो की एक किताब है जिसका शीर्षक ही है इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर। ये कहानी एक ऐसे पाठक के बारे में है जो एक उपन्यास पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे हर बार एक अलग अधूरी कहानी मिलती है।
अरे वाह, ये तो पाठक को भी खेल में शामिल करने जैसा हुआ।
बिल्कुल। या फिर इंटरटेक्सचुअलिटी का इस्तेमाल बढ़ा, मतलब एक कहानी में दूसरी कहानियों, फिल्मों, कविताओं, यहां तक कि विज्ञापनों का भी खुलकर जिक्र करना या उनकी नकल करना।
जैसे उम्बर्तो इको का उपन्यास द नेम ऑफ द रोज, सुना है? उसमें ऐसा बहुत है।
हाँ, वो एक मध्ययुगीन जासूसी कहानी है, लेकिन उसमें शर्लॉक होम्स से लेकर न जाने कितनी दूसरी किताबों और विचारों के हवाले भरे पड़े हैं। ये दिखाता है कि कोई भी कहानी अकेली नहीं होती, वो हमेशा दूसरी कहानियों के साथ एक डायलॉग में होती है।
और इन सब तकनीकों का मकसद क्या था?
मकसद था पाठक को सिर्फ एक निष्क्रिय श्रोता या दर्शक बनाए रखने की बजाय उसे अर्थ गढ़ने की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बनाना, उसे सोचने पर मजबूर करना।
और आजकल की दुनिया जहां मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया का इतना बोलबाला है, वहां तो ये पोस्ट मॉडर्न विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं ना?
बिल्कुल। यहाँ एक और फ्रांसीसी विचारक जॉन बॉड्रीलार्ड के विचार बहुत अहम हो जाते हैं। उन्होंने सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी की बात की थी।
ये क्या है?
सुनने में भारी लगते हैं।
हाँ, थोड़े हैं। बॉडरीलार्ड का कहना था कि आज की मीडिया संतृप्त दुनिया में छवियां और प्रतिनिधित्व, जिन्हें वो सिम्युलेक्रा कहते हैं, वो इतनी ज्यादा और इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वे अक्सर असली चीज की जगह ले लेती हैं।
मतलब नकल असल से ज्यादा अहम हो गई है।
हाँ, या फिर वो असल से भी ज्यादा असली लगने लगती हैं। इसी को वो हाइपर रियलिटी कहते हैं। सोचिए रियलिटी टीवी शोज के बारे में, या इंस्टाग्राम पर दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी, क्या वो वाकई असली है या वो असलियत का एक सुधारा हुआ एडिटेड संस्करण है जो असली से भी ज्यादा आकर्षक लगता है।
ये बात तो सोचने वाली है। विज्ञापन, फिल्में, वर्चुअल रियलिटी।
बॉडरीलार्ड तो यहां तक कहते थे कि शायद अब असली जैसा कुछ बचा ही नहीं है, हम सिर्फ इन छवियों, इन नकलों की दुनिया में जी रहे हैं। उनका एक मशहूर कथन है, थोड़ा विरोधाभासी है, कि सिमुलाक्रम वो नहीं है जो सत्य को छुपाता है, ये वो सत्य है जो इस तथ्य को छुपाता है कि कोई सत्य है ही नहीं।
बाप रे, ये तो काफी गहरा है, पर आज की डिजिटल दुनिया को समझने में शायद ये विचार कुछ मदद करते हैं।
और फिर आता है पहचान का सवाल, आइडेंटिटी। पोस्टमॉडर्निज्म ने उस पुराने विचार को भी चुनौती दी कि हर इंसान के अंदर एक स्थिर, सच्चा, प्रामाणिक मैं या सेल्फ होता है।
हाँ, वो अपने आप को खोजो वाली बात।
बिल्कुल, पोस्टमॉडर्निज्म कहता है कि हमारी पहचान ऐसी कोई एक ठोस चीज नहीं है, बल्कि ये खंडित, फ्रैगमेंटेड है, तरल, फ्लूइड है, और सबसे जरूरी, ये सामाजिक रूप से निर्मित, कंस्ट्रक्टेड है।
मतलब समाज बनाता है हमारी पहचान को।
हाँ, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे आसपास की संस्थाएं, हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमारी पहचान को गढ़ते हैं, और ये पहचान बदलती भी रहती है। आप स्कूल में अलग थे, कॉलेज में अलग, नौकरी में अलग, दोस्तों के साथ अलग, परिवार के साथ अलग, तो असली आप कौन है? पोस्टमॉडर्निज्म कहता है शायद ये सवाल ही गलत है।
ये तो लिंग यानी जेंडर के मामले में भी लागू होता होगा।
बिल्कुल, जूडिथ बटलर जैसे विचारकों ने यह तर्क दिया कि जेंडर यानी मर्द या औरत होना या कुछ और, ये कोई हमारी अंदरूनी जैविक सच्चाई नहीं है, बल्कि ये एक तरह का परफॉर्मेंस है।
परफॉर्मेंस मतलब अभिनय?
हाँ, एक तरह का अभिनय जो हम समाज के दिए हुए नियमों और अपेक्षाओं के हिसाब से लगातार करते रहते हैं, अपने कपड़ों से, अपने चलने बोलने के तरीके से, अपने व्यवहार से। ये दिखाता है कि जिन्हें हम बहुत प्राकृतिक या बायोलॉजिकल श्रेणियां मानते हैं, वो असल में कितनी ज्यादा सामाजिक रचनाएं हो सकती हैं, और उन्हें बदला भी जा सकता है।
इसकी आलोचना भी तो होती होगी।
हाँ हाँ, बिल्कुल, और काफी कड़ी आलोचना भी हुई है। सबसे बड़ा आरोप ये रखता है कि इसका जो हद से ज्यादा शक करने वाला रवैया है, वो रिलेटिविज्म यानी सापेक्षवाद की ओर ले जाता है।
मतलब कि सब कुछ व्यक्तिपरक है, कोई वस्तुनिष्ठ सच होता ही नहीं।
हाँ, और अगर सब कुछ व्यक्तिपरक है, हर किसी का अपना अपना सच है, तो फिर हम सही गलत, नैतिक अनैतिक का फैसला कैसे करेंगे? कोई साझा जमीन कैसे बनेगी? राजनीतिक कार्रवाई कैसे होगी? इसे लेकर बहुत बहस हुई है, जिसे कई बार कल्चर वॉर्स भी कहा गया।
और राजनीति के क्षेत्र में इसका क्या असर रहा?
राजनीति में पोस्टमॉडर्निज्म बड़ी बड़ी सार्वभौमिक विचारधाराओं जैसे मार्क्सवाद या उदारवाद के प्रति संशय रखता है, क्योंकि ये विचारधाराएं अक्सर अपनी कहानी को ही एकमात्र सच बताती हैं और असहमति या विविधता को दबाती हैं।
तो फिर ये किस तरह की राजनीति का समर्थन करता है?
इसकी जगह ये माइक्रोपॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर देता है, यानी छोटी स्थानीय विशिष्ट संघर्षों पर, खासकर उन समूहों की लड़ाई पर जो हाशिए पर हैं, जैसे महिलाएं, नस्लीय या जातीय अल्पसंख्यक, LGBTQ+ समुदाय। इसे ही हम पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। हर समूह अपनी अलग पहचान, अपने खास अनुभवों और अपने हकों की बात करता है।
लेकिन यहाँ पर वही दुविधा खड़ी हो जाती है ना?
बिल्कुल, अगर हर समूह का अपना सच है और कोई सार्वभौमिक सच नहीं है, तो क्या हम उत्पीड़न या अन्याय को वस्तुनिष्ठ रूप से गलत ठहरा सकते हैं, या वो भी सिर्फ एक नजरिए की बात रह जाएगी? बटलर इस मुश्किल सवाल का कोई आसान जवाब नहीं देते, लेकिन ये तनाव पोस्टमॉडर्निज्म के साथ हमेशा बना रहता है।
तो इतनी सारी बातचीत के बाद अगर कुछ मोटी मोटी बातें निकालनी हो, कुछ की टेकअवेज, तो वो क्या होंगी? मेरे लिए शायद सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है मेटा नैरेटिव्स यानी बड़ी कहानियों पर सवाल उठाना।
हाँ, किसी भी ऐसे दावे पर शक करना जो कहता है कि बस यही परम सत्य है, यही दुनिया की पूरी व्याख्या है।
हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो देखते हैं कैसे एक ही सरकारी नीति हो या कोई सामाजिक घटना, उसको अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग अपनी अपनी कहानी के चश्मे से देखते हैं। पोस्टमॉडर्निज्म हमें ये देखने की नजर देता है।
बिल्कुल, दूसरी अहम बात है ये समझना कि ज्ञान या सच कहीं आसमान से नहीं टपकता, उसे सामाजिक रूप से बनाया जाता है और अक्सर उसे वो लोग या संस्थाएं बनाती हैं जिनके हाथ में ताकत होती है।
जैसे हमारे स्कूल की इतिहास की किताबें, या म्यूजियम में क्या दिखाया जाता है, या मीडिया किन खबरों को अहमियत देता है।
हाँ, ये सब पूरी तरह तटस्थ या ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये समझना हमें ज्यादा जागरूक और आलोचनात्मक बनाता है।
तीसरा, अर्थ और भाषा की अस्थिरता। मतलब ये कि शब्दों, तस्वीरों, कहानियों का कोई एक फिक्स्ड मतलब नहीं होता।
सही, वो मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन, कब, कहां और किस संदर्भ में देख सुनिया पड़ रहा है। एक ही फिल्म किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं। एक ही मजाक किसी को हंसाता है, किसी को गुस्सा दिलाता है।
चौथी बात जो मुझे काफी अच्छी लगती है वो है अलग अलग दृष्टिकोणों और संस्कृतियों की बहुलता का सम्मान।
हाँ, पोस्टमॉडर्निज्म किसी एक सार्वभौमिक मानक को मानने से इनकार करता है और विभिन्न संस्कृतियों, जीवन शैलियों और नजरियों को महत्व देता है, उन्हें जगह देता है।
भारत की जो विविधता है, जहां इतने सारे अलग अलग सच, परंपराएं, भाषाएं एक साथ मौजूद हैं, वो शायद इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
बिल्कुल। और पांचवा पॉइंट है पारंपरिक सीमाओं का धुंधला पढ़ना।
किनके बीच की सीमाएं?
जैसे ऊंची कला और लोकप्रिय संस्कृति के बीच की सीमा, या फिर असलियत और उसकी प्रस्तुति यानी रिप्रेजेंटेशन के बीच की सीमा, या फिर ज्ञान के अलग अलग विषयों जैसे इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, इनके बीच की दीवारें।
हाँ, आजकल का जो रीमिक्स कल्चर है, या रियलिटी टीवी है, या इंटरनेट पर फैलते मीम्स हैं, या फ्यूजन म्यूजिक है, ये सब इसी धुंधलेपन के उदाहरण हैं।
बटलर की किताब में कुछ ऐसे कथनीय विचार हैं जो इन सब बातों का सार बहुत अच्छे से पकड़ते हैं।
हाँ, कुछ यादगार पंक्तियाँ,
जैसे ल्योतार का वो कहना कि पोस्टमॉडर्न को मैं बहुत सरलता से परिभाषित करूंगा, मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वसनीयता। ये बिल्कुल जड़ है इस विचार की।
और फूको की वो बात के ज्ञान और शक्ति एक दूसरे में समाहित है, मतलब ज्ञान कभी पावर से अलग नहीं होता, ये याद रखना बहुत जरूरी है।
हाँ, फिर आर्किटेक्ट रॉबर्ट विंटूरी का वो मजाकिया लेकिन गहरा नारा लेस इज अ बो, ये मॉडर्निज्म की उस अति गंभीरता और शुद्धतावादी सोच को सीधी चुनौती है।
और बोद्रिलार्ड का वो थोड़ा चौंकाने वाला, दिमाग घुमा देने वाला विचार के सिमुलैक्रम वो नहीं है जो सत्य को छुपाता है, ये वो सत्य है जो इस तथ्य को छुपाता है कि कोई सत्य है ही नहीं।
ये आज के मीडिया और वर्चुअल दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ कोट्स नहीं है, ये हमें उकसाते हैं कि हम दुनिया को देखने के अपने तरीकों पर सवाल उठाए।
अब असली सवाल, इन सब भारी भरकम किताबी लगने वाली बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है, क्या वास्ता है?
अरे बहुत गहरा वास्ता है अगर हम ध्यान से देखें तो। सबसे पहले तो मीडिया लिटरेसी, आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है।
मतलब मीडिया को समझना?
हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म हमें सिखाता है कि न्यूज चैनल पर जो दिख रहा है, या अखबार में जो छपा है, या व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड आया है, उसे आंख बंद करके सच ना मान लें।
सवाल पूछें।
बिल्कुल, पूछें ये कहानी कौन सुना रहा है, क्यों सुना रहा है, किसका फायदा है इसमें, कौन सी आवाजें हैं जो इसमें शामिल नहीं है।
ये तो बहुत जरूरी स्किल है आज।
दूसरा, हमारे सीखने के तरीके पर, ये हमें सिर्फ रटने रटाने की बजाय सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है।
मतलब किताबों या टीचर की हर बात को मान ना ले।
हाँ, अलग अलग नजरिए तलाशें, समझें कि ज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो हमेशा विकसित होता रहता है, बदलता रहता है।
तीसरा, क्रिएटिविटी के लिए कलाकारों, लेखकों, डिजाइनरों या किसी भी क्रिएटिव काम करने वाले के लिए ये कुछ एकदम नया, एकदम ओरिजिनल बनाने का जो दबाव होता है ना, उसे थोड़ा कम करता है।
कैसे?
ये दिखाता है कि मौजूदा चीजों को नए तरीकों से मिलाना, जुलाना, रीमिक्स करना, पेस्टिज करना, ये भी अपने आप में एक वैध और बहुत शक्तिशाली रचनात्मक काम हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार पहिया दोबारा ईजाद किया जाए।
चौथा, पहचान और आपसी रिश्तों में, ये हमें अपनी और दूसरों की पहचान को ज्यादा जटिल, ज्यादा लचीला समझने में मदद करता है।
इससे शायद सहानुभूति भी बढ़ती होगी।
बिल्कुल, हम समझ पाते हैं कि अलग अलग लोग एक ही स्थिति को अपने अनुभव, अपनी पृष्ठभूमि के कारण अलग तरह से क्यों देख सकते हैं। कोई एक सही तरीका या सही नजरिया नहीं होता अक्सर।
और पांचवा, सामाजिक जुड़ाव में, समाज से हम कैसे जुड़ते हैं।
हाँ, ये हमें उन आवाजों को सुनने और महत्व देने के लिए प्रेरित करता है जो अक्सर हाशिए पर धकेल दी जाती हैं, जिनकी कहानियां बड़ी कहानियों में खो जाती हैं।
लेकिन वो सावधानी भी जरूरी है।
हाँ, वो सावधानी भी जरूरी है कि कहीं सब कुछ नजरिया नजरिया कहने के चक्कर में हम अन्याय या उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने से ही ना कतराने लगें। यहां एक नाजुक संतुलन साधने की जरूरत पड़ती है। तो क्रिस्टोफर बटलर के जरिए पोस्ट मॉडर्निज्म की इस यात्रा के अंत में सबसे बड़ा सबक क्या है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यह है कि पोस्टमॉडर्निज्म अपनी सारी जटिलताओं और विवादों के बावजूद हमें आज की दुनिया को समझने के लिए कुछ बहुत जरूरी बौद्धिक उपकरण देता है।
तैयार जवाब नहीं बल्कि उपकरण।
हाँ, ये हमें शायद तैयार जवाब देने के बजाय बेहतर सवाल पूछना सिखाता है। सत्ता पर सवाल, ज्ञान कैसे बनता है उस पर सवाल, सच के दावों पर सवाल, और सबसे बढ़कर दूसरों के नजरियों को बहुलता को स्वीकार करने का महत्व सिखाता है। आज की सुलझीवी दुनिया में ये हुनर शायद बहुत कीमती है।
और मेरे लिए जो सबसे अहम बात निकल कर आई वो ये है कि बटलर ये बहुत साफ करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म सिर्फ एक नकारात्मक या विनाशकारी चीज नहीं है। ये नहीं कि सब कुछ तोड़ दो, खत्म कर दो।
हाँ, ये एक गलतफहमी है।
ये हमें एक तरह की बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। ये मानना कि हमारा सच ही एकमात्र या अंतिम सच नहीं है। ये हमें दिखाता है कि बहुत सी चीजें जिन्हें हम स्वाभाविक या सार्वभौमिक या हमेशा से ऐसा ही मानते आए हैं, वो असल में खास ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भों में बनी है और वे अक्सर किसी खास नजरिए को ही दर्शाती हैं। ये समझ हमें ज्यादा खुला और ज्यादा समावेशी बनने के लिए प्रेरित करती है।
और आखिर में एक सवाल हम शायद श्रोताओं के मन में छोड़ सकते हैं सोचने के लिए।
हाँ, जरूर।
सवाल ये कि अगर सभी बड़ी कहानियां, सभी मेटा नैरेटिव संदिग्ध हैं, तो फिर हम एक समाज के रूप में या एक दुनिया के रूप में साझा मूल्यों और साझा लक्ष्यों को कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या पोस्ट मॉडर्निज्म हमें केवल तोड़ने और संदेह करने के लिए ही छोड़ देता है, या ये संवाद और आपसी समझ बनाने के नए, ज्यादा जमीनी, ज्यादा स्थानीय तरीके भी सुझाता है? इस पर सोचने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्ट्रेस फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।